તારીખ 11/2/1991 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 629 અને 630 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 287 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
જાતે સ્મૃતિ જ્ઞાનની પ્રકૃતિને જાણનારા વિચારવાનું હોય છે અને જ્ઞાની પણ હોય છે, અને જાતે સ્મૃતિ જ્ઞાન વાળા પોતે પણ હોય છે. એના ઉપરથી એમ નક્કી કરી શકે કે આ આત્માને પણ આવું જાતે સ્મરણ સંભવે છે અથવા આ આત્માને જાતે સ્મરણ સંભવતું નથી પણ કંઈક બીજા હેતુથી આ બધી વાત ચલાવવાથી હોવાનો એને લાગે છે. આવો પણ જો કે મોક્ષને આ વિષય એટલો પ્રયોજનભૂત નથી એ વાત રાખીને વિચારવાનું છે કે આ વિષય મનુષ્યને એટલો પ્રયોજનભૂત જાણવાનો વિષય છે. પરમાર્થે આનો કોઈ ઉપયોગ નથી, પ્રયોજનભૂત નથી એટલે શું કે પરમાર્થે આને સમજવાનું જાણવાનો કોઈ ખાસ ઉપયોગ નથી. તે ન જાણે તો પણ પરમાર્થના માર્ગે જીવ હોઈ શકે છે, જાણે તો પણ પરમાર્થના માર્ગે હોઈ શકે છે, માટે અપ્રયોજનભૂત છે. કેટલા પડખેથી ખુલાસો કર્યો છે એટલું વિચારવાનું છે. અથવા જાતે સ્મૃતિ હોવી સંભવે છે અથવા જેને જાતે સ્મૃતિ જ્ઞાન છે તે પુરુષના સંબંધમાં કોઈ જીવ પૂર્વભાવે આવ્યો છે, વિશેષ કરીને આવ્યો છે, એને એ સંબંધ જણાવતા કાંઈ પણ સ્મૃતિ થાય તો તેવા જીવને પણ સ્મૃતિ આવે છે. એ બીજાને પણ સ્મૃતિ થવાનું નિમિત્ત બને છે. પોતે વિશેષપણે સ્મૃતિ બહુ પ્રસંગમાં આવ્યા હોય, પરિચયમાં આવ્યા હોય અને એને વાત કરે કે આમ બન્યું તો આમ બન્યું તો આમ બન્યું તો એના ઉપરથી કોઈને ખ્યાલ આવી પ્રતિ આવે કે બરાબર આમ બન્યું હોવું જોઈએ. ગુરુદેવના વિષયમાં આ વાતનું નિર્ધાર ગુરુદેવને જાતે સ્વજ્ઞાનમાં પણ કેટલાક ભાસ અને સ્વપ્નો ઉપરથી એમને કાંઈ ને કાંઈ એવું લાગતું હતું કે કોઈ કથા ધારણ આવો આવે છે પણ કાંઈ સ્પષ્ટીકરણ બીજી બેન શ્રી જાતે સ્મરણ તેનો ખુલાસો આપ્યો. આ પ્રકાર પૂર્વનો છે તે બરાબર છે એમ હોવું એ છેલ્લો પ્રકાર આવ્યો કે જેના વિશે કહે એને જાતે સ્મરણ ન હોય, જેનારને જાતે સ્મરણ હોય અને બીજાને કેટલાક પોતાના વર્તમાન પરિણામો ઉપરથી એવી પ્રતીતિ આવે કે જાતે સ્મરણ વિના આ બરાબર લાગે છે, મને પણ કંઈક આવા ચિહ્નો મારા ભાવમાં ઉત્પન્ન થાય છે. એ વિષય જાતે સ્મરણ વિનાના વિષયમાં એટલે કે પૂર્વભાવના વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ આપ્યું છે અને એ સ્પષ્ટીકરણ પોતાના અનુભવ ઉપરથી મને બીજો પ્રશ્ન. જીવ સમયે સમયે મરે છે તે કેવી રીતે સમજવું એનો ઉત્તર આ પ્રમાણે વિચારશો કે જેમ આત્માને સ્થૂળ દેહનો વિયોગ થાય છે તેને મરણ કહેવામાં આવે છે. ખરેખર આત્મા મરતો નથી તો કહેવાની વાત છે. સ્થૂળ દેહનો વિયોગ થાય છે, બીજા સ્થૂળ દેહનો સંયોગ થાય છે. એક દેહનો વિયોગ અને બીજા દેહનો સંયોગ. વિયોગ થયો તેમના મરણ પાડ્યું, બીજા દેહનો સંયોગ થયો તેનું નામ જન્મ રાખ્યું. આત્મા તો જન્મ પણ નથી અને આત્મા મરો પણ નથી. જેમ આત્માને સ્થૂળ દેહનો વિયોગ થાય છે તેને મરણ કહેવામાં આવે છે તેમ સ્થૂળ દેહનો આયુષ્ય આદિ સૂક્ષ્મ પર્યાયનો પણ સમયે સમયે હાનિ પરિણામ થવાથી વિયોગ થઈ રહ્યો છે. તેથી તે સમયે સમયે મરણ કહેવા યોગ્ય છે. એની સંપૂર્ણ હાનિ થઈ ગઈ, આયુષ્યની સંપૂર્ણ હાનિ થતાં સ્થૂળ દેહ પણ છૂટી ગયો. એમ આયુષ્યની ક્રમશઃ હાનિ થાય તો પણ એ એક જાતનું મરણ છે. મરણ સમીપતા પણ એક જાતનું મરણ છે. તે મરણ સમયે સમયે રહેવા યોગ્ય છે. આ મરણ તે વ્યવહાર નીતિ કહેવાય છે. વ્યવહાર નીતિ કહેવાય છે એટલે શું કે નિશ્ચયથી મરણની વાત જુદી છે અને વ્યવહારથી મરણની વાત જુદી છે. આયુષ્ય કર્મના ક્ષય સાથેનો સંબંધ બતાવીને એને મરણ કહ્યું માટે તે વ્યવહાર છે. બીજાના સાથેનો સંબંધ તે વ્યવહાર, પોતાના ને પોતાના વિષયમાં વાત થાય તે નિશ્ચય. સ્વઆશ્રિતો વિષય, પરાશ્રિતો વ્યવહાર જે સૂત્ર છે એ પ્રમાણે અહીંયા પણ સમજવું. આમરણ તો વ્યવહાર નથી કહેવાય છે. નિશ્ચયથી તો આત્માને સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણ પર્યાયની વિભાવ પરિણામના યોગને લીધે હાનિ થયા કરે. શું નિશ્ચય મરણ માટે ગુજરાતી સમજમાં આવી ગયો? હિન્દી પ્રસાદ વ્યવહાર મરણ દેહત્યાગ ઓર નિશ્ચય મરણ દેહત્યાગ મેં વ્યવહાર પ્રાણ કા અભાવ હોતા હૈ, નાશ હોતા હૈ. શ્વાસોશ્વાસ, આયુ, પંચેન્દ્રિય, મનોવચન, કાયા કા યોગ, એ દસ પર્યાપ્તિ રૂપ જો વ્યવહાર પ્રાણ હૈ, દસ પ્રાણ જિસકો કહેતે હૈ, ઉસકા વિયોગ હોને હે ઉસકો વ્યવહાર મરણ. નિશ્ચય મરણ કિસકો કહેતે હૈ કે ભાવ પ્રાણ કા નાશ હોતા હૈ, ઉસકો નિશ્ચય મરણ કહેતે હૈ. દોનો પ્રાણ હૈ, નિશ્ચય પ્રાણ મેને વાસ્તવિક પ્રાણ, ખરા પ્રાણ. વ્યવહાર પ્રાણ મેને વાસ્તવિક પ્રાણ નહીં, તો આત્મા કે સંયોગ રૂપ સંબંધ છે પુદ્ગલો કા, કુછ સ્થિતિ પર્યંત કુછ નિવાસ. તો કહેતે હૈ કે વ્યવહાર પ્રાણ, વ્યવહાર મરણ તો ઇસકો કહેતે હૈ કે જો સ્થૂળ દેહાદિનો ત્યાગ હોય ઉસકો વ્યવહાર મરણ કહેતે હૈ. નિશ્ચય છે તો આત્મા કો સ્વાભાવિક એસે જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણ પર્યાયથી વિભાવ પરિણામ કા સંયોગ કે કારણ સે હાનિ होने लगती है. और वह हानि आत्मा का नित्यपना आदि स्वरूप को पण ग्रहण करके रहती है, तो उसको समय समय मरण कहने में क्या बात है कि आत्मा को जो विभाव परिणाम यानी विकार के जो परिणाम होते हैं उस विकार के परिणाम के कारण से उनका ज्ञान है, उनका दर्शन है, जो आत्मा के प्राण हैं उनको हानि पहुँचती है. कैसे पहुँचती है? कि जीव इधर बहुत राग द्वेष मोह करता है विभाव परिणाम, तो उसको एक इंद्रिय में जाना होता है, निबोध में जाना होता है. वहाँ उसका ज्ञान दर्शन बिल्कुल आवृत हो जाता है, मतलब नाश के बराबर. आंशिक हानि होती है तो दो इंद्रिय होता है, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय होता है, तो उसमें भी ज्यादा ज्ञान नहीं है. अरे सन्नी पंचेंद्रियों को भी बहुत कम ज्ञान है, वो विचार शक्ति की कुंठित हो जाती है. इस प्रकार से ज्ञान की दर्शन की हानि हुई आत्मा में आत्म शांति नाम का प्राण, आनंद प्राण जिसको कहते हैं, सुख रूप प्राण कहते हैं, इसके लिए हमें राग द्वेष में, राग द्वेष में आकुलता बहुत होती है, दुख बहुत होती है। बहुत दुख होने से, आकुलता बहुत बढ़ जाने से शांति हो जाती है, शांति का खून हो जाता है, नाश हो जाता है। ये भी आत्मा के भाव प्राण का नाश है। निगुद में बहुत दुख है, प्रचुर कषाय कलम धवल में अपार टीका है सत्संगालम पर, उसमें लिखा है कि निगोध का जीव के परिणाम कैसे होता है, जो सर्वज्ञ के ज्ञान जो सर्वज्ञ प्रचुर कषाय कलंक में होते हैं, बहुत दुख और बहुत कषाय, मन नहीं है और ज्ञान तो बिल्कुल आवृत हो गया है। इसको भाव मरण कहने में आता है। ऐसा समय समय अनुभव होता है नाम और सुख का घात होने का, इसको समय समय का भाव मरण कहने में आता है। 15 साल की उम्र में ये काव्य लिखा है, बहुपुण्य तेरा पुण्य थे, इसमें वो बात का प्रयोग किया है कि अरे जी तुमको लक्ष्मी मिलती है, तुमको सत्ता मिलती है राज्य में, और तुमको कुटुंब परिवार की बढ़वारी होती है, तुमको क्या मिला? एक क्षण भर विचार करके देख तो तुझे क्या मिला कि ऐसे संयोगों के आश्रित तुझने बहुत आकुलता की, बहुत राग द्वेष किया, तीव्र राग किया, बहुत पैसे मिले, तुम परिवार बहुत बढ़ गया, सत्ता बहुत मिली, तीव्र राग किया, इसमें क्या किया? क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोराती रहो, राखी मैंने खुश होना, तेरा भाव प्राण का तो नाश होता है और तुझे खुशी होती है, मूर्खता की भी कोई हद होती है, ऐसा कहते हैं 15 साल की उम्र में। तेरा नुकसान में तो खुशी होता है, क्या बात है, लेकिन इस विषय को कभी सोचा नहीं, विचार किया नहीं, इसलिए वो अपने नुकसान करके वर्तमान आयु पूरा करके नोट है, रोपण की है नोट है, उसका खर्च कर दिया। क्या खर्च किया? जहर खाने में पैसा तो था, मशीन खरीदा, अपना प्राण का नाश करके एक इंद्री गाड़ी में जीव चला जाता है। इसलिए उसको समय समय मरण कहने में आता है। तीसरा प्रश्न ज्ञान दशा में भाव मरण सुनता होता ही रहता है, चारों गति में, मनुष्य हो, देव हो, त्रिवेंद्र हो, नास्तिक, आत्मज्ञान का अभाव में मुझे क्या करना उचित है, मेरा कर्तव्य समुचित कर्तव्य क्या है और मेरा अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान नहीं होने से अपनी हानि के परिणाम करते हैं और अच्छा लगता है, तो मैं ठीक करता हूँ, उसी का नाम विपरीत ज्ञान कहो, उसी का नाम अज्ञान कहो, इसी का सही ज्ञान करना, सच्चा सम्यक ज्ञान करना। सम्यक ज्ञान का मुख्य गुण यही है कि वो हे उपाधेय को यथार्थ रूप से जानता है, हे क्या है, उपाधेय क्या है, मेरी कर्तव्य क्या है, मेरा अकर्तव्य क्या है। तीसरा प्रश्न, केवल ज्ञान दर्शन को, केवल ज्ञान दर्शन में गत काल में और आगामी काल के पदार्थ, केवल ज्ञान दर्शन में गत काल के पदार्थ, विगत हुए दो काल और आने वाला आगत काल के पदार्थ, वर्तमान काल में वर्तमान रूप वर्तमान पड़े दिखने में आता है या कोई दूसरे प्रकार से दिखने में आता है, ऐसा ही प्रश्न उठाया है कि केवल ज्ञान होता है तो वर्तमान पदार्थ को तो हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं, लेकिन जो पूर्व में इसकी स्थिति थी वो लकड़ी की, और भविष्य में क्या स्थिति होगी उसका ज्ञान उसमें होता है तो किस ढंग से होता है, किस प्रकार से होता है। जैसे वर्तमान में एक पेड़ की लकड़ी थी तो उसका ज्ञान पेड़ रूप होता है, अभी जो स्थिति है उस रूप होता है, होता है तो किस रूप होता है, यानी केवल ज्ञान भूतकाल के पदार्थ को और वर्तमान भविष्य के पदार्थ को किस तरह जानता है, ऐसा प्रश्न उसको जानना कैसे होता है, वर्तमान वत जानता है या कोई अन्य रूप से जानता है, कैसे जानता है वर्तमान रूप मैंने कैसे, कि जैसे ये वर्तमान में दिखने में आती है ऐसे उसको वर्तमान रूप कहते हैं, ऐसे जानता है या कोई अन्य रूप से जानता है, ऐसा प्रश्न किया। इस प्रश्न से केवल ज्ञान का जानने का प्रकार किस कैसा होता है, केवल ज्ञान कैसे जानता है उसको स्पष्ट करते हैं। उसको स्पष्ट करने से ये पता चलता है कि केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है, ये जानकारी मिलती है कि केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है। दूसरा प्रश्न प्रयोजनभूत है, तीसरा प्रश्न उतना प्रयोजनभूत नहीं है, क्योंकि दूसरा प्रश्न में तो समय समय भाव मरण में अपनी हानि होती है, अपना सुख का नाश होता है, तो ये प्रयोजन है। तीसरा प्रश्न में उतना प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जानने का तरीका कैसा उतनी बात है, और वो भी केवल ज्ञानी को जानने का तरीका कैसा होता है उतनी बात है। हाँ, उतना उसमें एक मुद्दा अवश्य है कि ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसा जानने से आत्मा की शक्ति अगर विकास हो, परिपूर्ण आत्मा की ज्ञान शक्ति का विकास हो तो कितना बड़ा विकास होता है, अपनी शक्ति का अंदाज और अपनी शक्ति का नाप इसमें आ सकता है। इसी बात उत्तर के वर्तमान में वर्तमान पदार्थ जैसे देखने में आता है तैसे ही गतकाल के पदार्थ गतकाल में जो स्वरूप में था उसी स्वरूप में वर्तमान में दिखने में, जैसे कि ये पेड़ रूप की लकड़ी तो भूतकाल इसका देखने में कैसे आ गए, इसका जैसा पेड़ था वैसा देखने में आ गया, जैसे ये चंदन की लकड़ी ये सुखड़ गई तो चंदन का पेड़ कैसा था, उसमें एक टुकड़ा का कौन से परमाणु में कहाँ उसका अवयव था, सारे पेड़ में इसका भी एक अवयव रूप रहने का था ये परमाणुओं का, तो किस ढंग से किस पर्याय में किस आकार में किस रंग में रूप में जैसा उसी वर्तमान में कोई देखता था वो तो भूतकाल की बात ठीक उसी तरह जैसे वर्तमान में ये पेड़ हो ऐसा दिख, ऐसे केवल ज्ञान में उतना स्पष्ट होता है वर्तमान वत जिसको कहते हैं, कैसे कहते हैं वर्तमान वत, भूतकाल की पर्यायें भी वर्तमान वत दिखती है और आगामी काल में वही पदार्थ जिस स्वरूप को प्राप्त होगा, मैंने जिस अवस्था को प्राप्त होगा उसी स्वरूप में वो वर्तमान में दिखने में आती है। जैसे वो जल जाएगी उसकी रक्षा हो जाएगी, जल जाएगी तो ये कोयला हो जाएगा, ऐसे क्रियाएं तो होगी जलने के बाद, तो वो भी वर्तमान में दिखने में आती है। तो इतने काल के पीछे इनकी ये अवस्था है, पहले वो अवस्था थी, अब आगामी काल में वो अवस्था उसकी होने वाली है। वो समय की नाप आती है और उसकी अवस्था भी मालूम वर्तमानवत होती है, वो वर्तमान काल में दिखने में आती है। भूतकाल में जो जो पर्याय से पदार्थ प्राप्त हुआ है उस कारण बने वर्तमान में पदार्थ, उस कारण रूप से वर्तमान में यही पदार्थ उस कारण रूप में रहा है। क्या कहते हैं कि ये अवस्था है लकड़ी की, उसका कारण वो पेड़ थे, वो एक पेड़ था इसलिए वो लकड़ी बनी, चापड़ी बनी। अगर वो सोना होता या पत्थर होता तो ऐसी अवस्था आज नहीं होती। तो ऐसी अवस्था होने की योग्यता ये परमाणु में शुरू से ही थी, पहले से ही थी, ऐसा कारण को वो पकड़ लेते हैं केवल केवल ज्ञान। जैसे कोई कह सकते हैं, निर्माण करते हैं कभी ये आदमी आगे जाके ऐसा ही कदम उठाएगा, क्या कहते हैं अपन, तो मैं इस आदमी को जानता हूँ, अगर ये परिस्थिति खड़ी वर्तमान में हो गई है तो आगे जाके वो ऐसा कदम उठाएगा। तो वर्तमान में उसकी भविष्य की पर्याय का कारण को देखते हुए उसका फोरकास्ट कर सकते हैं, भविष्य की बात कर सकते हैं। वैसे केवल ज्ञानी पूर्व की अवस्था में कारण देख करके उसके कार्य रूप अवस्था कैसी होगी वो बराबर वो ज्ञान में आता है। मैंने कारण कार्य का लॉजिक है और कारण कार्य का वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, यही कारण है ऐसा कहने में। भूतकाल में जो जो पर्याय वो पदार्थ में हुई है उसके कारण रूप से वर्तमान में वो पदार्थ के विषय रहा है, और भविष्य में जो जो पर्याय होगी उसी की योग्यता वर्तमान में वो इस पदार्थ के रूप में मौजूद है। आने वाली पर्याय का अवस्था का कारण वर्तमान में इस पदार्थ में मौजूद है, इस कारण के मौजूदगी से कार्य का भी ज्ञान हो सकता है, ऐसा केवल ज्ञान में ज्ञान होता है। जैसे रोटी, रोटी हम चूल्हे पर लगाते हैं वो कच्ची है, लेकिन ये पक जाएगी 15 सेकंड में या 30 सेकंड में, वो पूरी की पूरी पक जाएगी। क्यों? कि पकने का इसमें गुण है, उस जगह कोई लकड़ी को रखे तो जल जावे और रोटी को रखे तो रोटी पक जावे। तो दोनों का कारण कार्य पदार्थ में अलग अलग कारण है, इसलिए दोनों की अवस्था अलग अलग होती है। पानी ठंडा है और उसमें चूना डालने में आवे, चूना भी स्पर्श करे तो ठंडा है, तो माता इतना बड़ा वो लेवल है 1 किलो 2 किलो का, तो थोड़ा एक बाजू में पानी रख के डाल दे, पानी भी ठंडा है चूना भी उसमें नहीं है ठंडा है, लेकिन पानी का संयोग होते ही उसमें गर्मी आ जाएगी। तो गर्मी आने से पहले उसका ज्ञान हो सकता है क्या? कहाँ हो सकता है, अवस्था तो ठंडी थी दोनों की, पता भी लगा कि पानी गर्म हो जाएगा। उसका कारण का ज्ञान जिसको है उसको आने वाली अवस्था का ज्ञान भी होता है कार्य का। उसी तरह से इसलिए भविष्य में जो जो पर्याय होने वाली है उसकी योग्यता कारण रूप योग्यता वर्तमान वर्तमान पदार्थ में रही है, वही कारण और योग्यता का ज्ञान वर्तमान काल में भी केवल ज्ञानी को विषय केवल ज्ञानी में यथार्थ रूप से हो सकता है। केवल ज्ञानी को ऐसे कारण कार्य का ज्ञान यथार्थ रूप से होता है, हो सकता है, इसलिए केवल ज्ञानी को ऐसा ज्ञान होता है। यद्यपि यह प्रश्न प्रति बहुत विचार जनाने दिखाने योग्य है, ये जो केवल ज्ञान का विषय है इसमें तो बहुत सी बातें कह सकते हैं, फिर भी इधर मर्यादा को लिखा पत्र पहुंचा है। उस पत्र में मुख्य रूप से तीन प्रश्न लिखे हैं। ऐसा दर्शाया कि एक मनुष्य प्राणी दिवस के समय में आत्मा के गुण से अमुक हद क्षेत्र के अमुक हद को दिखता है। क्या कहते हैं? एक मनुष्य प्राणी दिन सूर्य के प्रकाश में अमुक क्षेत्र पर्यंत देख सकता है और रात्रि के समय में अंधेरे में कुछ नहीं देखता। सूर्य का प्रकाश मिलने से कुछ हद तक देखता, जितना क्षेत्र है पूरा को नहीं देखता है लेकिन मर्यादित क्षेत्र को देखता है, और रात्रि के अंधेरे में वो कुछ नहीं देख सकता है। और फिर दूसरे दिन में फिर वो देखने लगता है उसी पदार्थ को जो अंधेरे में नहीं देखा था, उसको फिर दिन के समय में फिर देखता है, और फिर रात्रि को अंधेरे में कुछ नहीं देखता, फिर रात्रि आती है उसको देखने में नहीं आता। अतः एक अहोरात्र में अहो मैंने दिन, एक दिन और रात्र में चालू इस प्रमाण से आत्मा के गुण पर अध्यवसाय बदलाए बिना नहीं देखने का आवरण कैसे आता है कि देखने का आत्मा का गुण ही नहीं है, और सूरज के कारण से, सूर्य की उपस्थिति के कारण से देखता है आत्मा। इसलिए सूरज का किसी गुण का सूर्य का सूरज मैंने सूर्य सूर्य का किसी गुण का कारण से उसकी अनुपस्थिति में नहीं देखने में आता है, और इसी प्रकार से ठीक सुनने में भी सुनने के दृष्टांत में भी कान के आड़े मैंने ऐसे हाथ रख दबे अंगूठी रखते हुए आड़े सुनने में नहीं आता, तब आत्मा का गुण को क्या हो जाता है? क्या आत्मा का गुण विनष्ट हो जाता है? क्या नाश हो जाता है? इसका संक्षेप में उत्तर क्या प्रश्न चला है कि एक ज्ञान जानता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, ऐसा एक ज्ञान का वर्ण को जानने का कार्य आंख द्वारा होता है, आवाज को सुनने का ज्ञान कान द्वारा होता है, तो ऐसा होने में भी ये क्या गड़बड़ी है कि सूर्य नहीं हो गए तो आंख नहीं देखे, ज्ञान को देखना बंद हो गए, और सूर्य की उपस्थिति में ज्ञान देखने लगे। तो ये देखने का गुण ज्ञान का है या फिर सूर्य में कोई ऐसा गुण है कि जो ज्ञान को दिखाने लगता है? वास्तव में बात क्या है? कान से सुनते हैं, अंगुली रख देवे या कुछ रख देवे, बंद कर देवे, सुनने को नहीं आता। तो ये किस प्रकार की बात है कि वो आत्मा का गुण उसको कार्य नहीं करता है? और गुण का कार्य उसमें नहीं होता है ऐसा दिखने में आता है। ऐसा क्यों? गुण है वो तो कार्य तो करना चाहिए, ऐसा पराधीन क्यों हो गया आत्मा कि कुछ दूसरे पदार्थ की मदद से जाने देखे, दूसरे पदार्थ के आगे पीछे होने से जानना देखना उसका नहीं हो गया। ये बात कैसी है? वास्तव में प्रश्न देखे तो ये प्रश्न निमित्त उपादान का एक पेटा विभाग है। मुद्दा ये है कि जानने का गुण तो आत्मा के उपादान में है, उपादान मैंने निज शक्ति, पर निमित्त मैंने पर संयोग, दूसरा पदार्थ का संयोग। तब आत्मा की अवस्था जो ज्ञान रूप है उसमें पर संयोग से जो फेरफार देखने में आता है, तो वास्तव में ये दोनों पदार्थ की वैज्ञानिक परिस्थिति क्या है, उसका साइंस कौन सा है? क्या आत्मा दूसरा पदार्थ के अधीन ही कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है, या स्वतंत्र रूप से कर सकता है? परिस्थिति क्या है, वास्तविक परिस्थिति क्या है? ऐसा एक दृष्टांत प्रश्न में रख करके प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर देते हैं। तो ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्म का अमुक क्षोभम होने से, अमुक मैंने किंचित, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का अंशतः क्षोभम होने से इंद्रिय लब्धि उत्पन्न होती है, इसको लब्धि कहते हैं। एक इंद्रिय की लब्धि, दो इंद्रिय की लब्धि, तीन इंद्रिय की लब्धि, अपने मनुष्य को पांच इंद्रिय और छठा मन, ऐसे छह इंद्रियों की लब्धि अपने को होती है। लब्धि मैंने क्या कि जब हम चाहे उसका प्रयोग कर सकें, उसको लब्धि कहते हैं। ये लब्धि होती है ना रिद्धि सिद्धि की, जिसे को ऐसी लब्धि होती है कि जैसे पानी देते हैं तो उसका रोग निकल जाता है, मंत्र पानी मंत्रित करते हैं, यंत्र तंत्र की लब्धि होती है। बहुत सी विद्याएं हैं असंख्य प्रकार की विश्व में, तो उसको लब्धि कहते हैं कि भाई कोई विशिष्ट प्रकार की लब्धि है। ऐसे पांच इंद्रियों और छठा मन की लब्धि है, मनुष्यों को उतनी लब्धि है। अगर हम सुनना चाहते हैं तो हम कान पर हमारा उपयोग ले जाते हैं, हम देखना चाहते हैं तो आँख पर हमारा नाक के व्यापार को ले जाते हैं, कोई स्वाद लेना चाहते हैं तो हम हमारा उपयोग को ज्ञान के व्यापार को वहाँ लगाते हैं, कोई चिंता हो या विचार करना सोचना हो तो मन में हमारा उपयोग को हम लगाते हैं। तो जिस जिस क्रम से ये होता है, एक साथ हो सकता, दो काम नहीं हो सकता है, उतनी मर्यादा है इस लब्धि में कि छह प्रकार के लब्धि होने पर भी क्रम से हम एक एक लब्धि का उपयोग कर सकते, एक साथ दो का नहीं कर सकते, ज्यादा का तो सवाल नहीं रहता। तो ऐसी इंद्रिय लब्धि नानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षोभ से जीव को होती है, उसको इंद्रिय लब्धि कहते हैं। वह इंद्रिय लब्धि सामान्य रूप से पांच प्रकार की कह सकते हैं, स्पर्शेंद्रिय से श्रवणेंद्रिय पर्यंत, पहली स्पर्शेंद्रिय और पांचवी श्रवणेंद्रिय। मैंने स्पर्शेंद्रिय, मैंने त्वचा जो स्पर्श को मालूम करती है, ये रूखा है, ये सुमारा है, या गर्म है, या ठंडा है, हल्का है, भारी है, ऐसा उसको स्पर्शेंद्रिय कहते हैं। फिर रचना इंद्रिय होती है, जीभ, फिर नाक, ज्ञानेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। तो स्पर्शेंद्रिय से लेकर श्रवणेन्द्रिय कर्णेन्द्रिय पर्यंत सामान्य रूप से मनुष्य प्राणी को पांच इंद्रियों की लब्धियों का क्षयोक्षण होता है सामान्य रूप से। विशेष रूप से किसी को मन नहीं होता है, ऐसा भी बनता है,
मन बिना काबू मनुष्य होते हैं, जिसको असंगनी पंचेंद्रिय भी कहने में आता है, जो समूर्छन मनुष्य होते हैं ऐसा। या किसी को आंख फूट जाती है, आंख फूट जाती है तो उसका देखने का नहीं होता है, वो चतुरेंद्रिय नहीं होता है, वो तो पंचेंद्रिय होता है, लेकिन उनकी जो लब्धि है उसको उसको हानि हो गई, ऐसा हुआ। वक्षोषम की शक्ति अमुक व्याहती हुए वहां तक जानती है और देखती है। एक सूक्ष्म शक्ति का भी जो मर्यादा है वो अमुक हद तक या और अमुक उसको जो कुछ जानने देखने में व्याहत हुए, मैंने अंतराय हुए, ऐसा हुए वहां तक वो जाने देखे नहीं देखे। जैसे हम खुला जमीन हो गए तो एक माइल दो माइल पांच माइल तक हम देख सकते हैं, ये रास्ता एक माइल तक दिखता है, बीच में कोई दीवार आ जाती है तो हम ये तीस फुट के आगे नहीं देख सकते हैं। इस कमरा से पीछे क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, तो देखने की हमारी शक्ति तो एक माइल मिल सकती है, दो किलोमीटर बराबर दिख रहा खुला रास्ता होगा तो, लेकिन दस फुट के आगे एक दीवार होगी हमारा देखना बंद हो गया, तो उसको व्याहत कहते हैं, बाधा जिसको कहते हैं, कि बाधा आने से कुछ बाधा आने से कम दिखे, बाधा नहीं हुए तो ज्यादा दिखे, ऐसे ये लब्धि का प्रकार ऐसा होता है। लब्धि है फिर भी उस मर्यादा वाली लब्धि है, ऐसी मर्यादा है उस लब्धि में जानने देखने की,
उसकी खुद की शक्ति ऐसी होती है,
खुद की ऐसी शक्ति है। मैंने जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो हमारे नंबर हैं अलग अलग, एक नंबर का चश्मा सभी को लागू नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी की आंख से देखने की शक्ति कम है, किसी की ज्यादा है, कितनी ज्यादा कम है को वो नंबर से हम बता सकते हैं, इसको ज्यादा नंबर का ग्लास चाहिए तो उसको आंख में देखने की शक्ति कम हो गई है, उसको बिल्कुल ग्लास की आवश्यकता नहीं है तो उसकी शक्ति बराबर नॉर्मल वो देख सकता है आदमी। तो ये शक्ति की कमी जैसे को नाप करने के लिए नंबर है ऐसा। उस प्रकार की है वो, उसका शक्ति का माप है, अवस्था का ज्ञान का माप हुआ, देखने का ज्ञान का मर्यादा खुद कितनी है कितनी नहीं है उतनी बात हुई उसमें। हाँ, आज का निमित्त चाहिए का मतलब क्या है कि उसकी शक्ति कम है, तो हमको देखने के लिए दो तरीके हैं, किसी भी बात को देखने के लिए दो तरीके होते हैं, कि पदार्थ की अवस्था का ज्ञान करते उस पदार्थ की मूल शक्ति किस प्रकार की है, किस हालत में है, उसको भी हम देख सकते हैं। दूसरा, कुछ संयोग से उसका नाप निकालना है, ये भी इसकी देखने के दूसरी शक्ति होती है ऐसा, दूसरी साइड से देखते हैं, यानी दो एंगल से एक ही जीव एक ही अवस्था को देखने का विश्व में दृष्टिकोण है। कहां से देखे, जैसे एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, कि घर से निकला मंदिर आया, अभी रास्ते में खड़ा है, रास्ते में चलता है समझो, तो उसको मंदिर से देखे या घर से देखे, दो जगह से उसको देख सकते हैं, कि घर से तो उतना दूर निकल गया कि करीब करीब मंदिर के पास पहुंचा, तो घर से दूर है ऐसे कहेंगे, और मंदिर के पास पहुंचा है तो मंदिर से देखे तो क्या है कि मंदिर से नजदीक है ऐसे देखे, वास्तव में तो जहां है वहां है, लेकिन देखने का दो एंगल होता है, दो दृष्टिकोण होता है, कहां से हमें देखना है पदार्थ को, हमको कहां से देखना है उसका निश्चय हम कर सकते हैं, यहां से देखे वहां यहां से देखे, जैसे ये प्रस्तुत विषय है उसमें ज्ञान का देखने जानने की मर्यादा की चर्चा हो रही है। तो हम ज्ञान को अपनी शक्ति से देखना है या ज्ञान को दूसरे पदार्थ के संयोग या निमित्त से देखना है, दो एंगल से, दो दृष्टिकोण से उसको देख सकते हैं, नाप सकते हैं। और दोनों तरफ से, दोनों दृष्टिकोण से देखने में हमें सही ज्ञान कैसे होता है वो वहां से, मैंने दोनों दृष्टिकोण से देखने से उसका सही ज्ञान होता है कि वास्तव में परिस्थिति क्या है। और सही ज्ञान होने से अभी इसके ऊपर कोई निर्णय, डिसीजन लेना हो तो हम ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, बस उसकी बात है। तो ये देखने का दृष्टिकोण होता है। એટલે કેવી રીતે થાય એટલે શું પ્રશ્ન છે? આવરણનો ક્ષય, નિરાવરણ એસા જો અપના મૂળ સ્વરૂપ ઉસકા અનુભવ કરને સે ઉસમે લીન હોને સે આવરણ કા ક્ષય હો જાતા હૈ। સભી સર્વજ્ઞ પરમાત્મા કેવલ જ્ઞાની પ્રભુને અપને સ્વરૂપ મે લીન હો કરકે नाना वर्णी और दर्शना वर्णी का क्षय कर डाला। ये भगवान को विराजमान किए हैं, किस अवस्था में किया है हमने, तो वो स्वरूप में लीन हो गए हैं, ऐसी अवस्था में रखते हैं तो उसको नाना वर्णी और दर्शना वर्णी होता नहीं है। हाँ, सभी कर्म का क्षय एक ही प्रकार से होता है। आठ प्रकार का हो या कर्म अनंत प्रकार का हो, सभी कर्म का क्षय एक ही रीति से होता है। मैंने कर्म क्षय करने की मास्टर की एक ही है, कर्म अनंत प्रकार के हैं, लेकिन ये परमात्मा होने का मार्ग की जो कार्य पद्धति है उसमें एक ही प्रकार है। इसलिए मार्ग की एक सुंदरता है, ये सुंदर उपाय ऐसा है कि हमको लंबी चौड़ी माथा पचीसी करना पड़े नहीं, एक ही रीत हम सीख जावे, एक पद्धति को हम ग्रहण कर लेवे, बस खत्म, आठों कर्म को खत्म होने के लिए और सारा संसार को नाश करने के लिए, निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए एक ही पद्धति हमें समझनी है, हमें सीखनी है और हमने कार्यान्वित करनी है। इतना ये सुंदर मार्ग है, बस स्वरूप में लीन होना, स्वरूप में स्थिर होना, अपना स्वरूप का ज्ञान करना। ज्ञान करने से आत्मा में किस किस प्रकार की शक्तियां हैं उसका ज्ञान होगा कि आत्मा में ज्ञान शक्ति कितनी महान है और आनंद शक्ति किस प्रकार की है। आत्म आनंद, किस प्राणी को आनंद पसंद नहीं हो, ऐसा बन ही नहीं सकता। सभी को आनंद चाहिए। जब जीव को अपने स्वरूप में अनंत आनंद भरा है शक्ति रूप से, ऐसा जब मालूम पड़ता है तो जीव अंतर्मुख होकर के इस आनंद को भोगने में लीन होने में उसको एक आकर्षण पैदा होता है। हमारे परिणाम पांच इंद्रियों के विषय प्रति क्यों जाता है कि वहां आनंद है, वहां सुख है, ऐसा हमारा निश्चय है, तो हमारा पूर्वग्रहित निश्चय के कारण हमारे परिणाम वहां लगे रहते हैं, लग जाते हैं, लगने में हम खुद रोक सकते नहीं है, ऐसी हालत बन गई है। अब कहते हैं कि वहां आनंद होता तो तुझे तृप्ति मिलती, लेकिन तुझे तृप्ति तो कभी न हुई है न होने वाली है। इसलिए अगर तेरा आनंद का तुझे पता चल गया तो तेरा परिणाम का आकर्षण अपने आत्मा में लगने का हो जाएगा। आत्मा में परिणाम लगने से, सभी परिणाम लग जाने से आवरण, सब कर्म के आवरण खत्म हो जाएंगे और निर्वाण पद प्राप्ति, निरावरण दशा की हो जाएगी। बस इतनी बात है। जो कुछ बात है वो तो उतनी ही है। फिर इस जीव को समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको लंबी चौड़ी करके समझाने में आती है। मतलब बात तो इतनी ही है, कोई लंबी बात इसमें है ही नहीं। अनंत काल से हम ऊंधे चले तो अनंत काल निकला, हमने हमारा आनंद हमारे में है दूसरे में नहीं है ऐसा सोचा ही कब है? तो सोचा ही नहीं, जो बात समझ में आई नहीं उसके लिए प्रयत्न होना तो संभव भी नहीं, कैसे प्रयत्न हो सकता है? तो सारे जगत को देखो क्या परिस्थिति है, कि बाहर में जहां भी सुख का साधन माना है उसको जुटाने के लिए सारी दुनिया की दौड़ लगी हुई है। एक जैन दर्शन ऐसा है, या आस्तिक के दर्शनों में भी ये बात है कि सुख तो आत्मा में है, सुख कहीं आत्मा का सुख आत्मा के बाहर कहीं नहीं है, तो आत्मा में परिणाम लगाने चाहिए स्वभाव में। अब ये बात सुनने में आने पर भी हम सीधा नहीं चले, अंधा चले, तो हमारी हालत क्या बनी रहे? कि जो दूसरे संसार प्राणियों की होती है, कर्म का बंध बढ़ जाने से, ज्ञान और सुख का हानि होने से, फिर दुर्गति में जीव चला जाता है। दुर्गति में चला जाना ये सहज मात्र में है, सहज मात्र में आयुष पूरा करके जो भी राग द्वेष मोह किए हैं उसके फल में दुर्गति में जाने में देर लगती नहीं है। आयुष पूरा होते ही दूसरे समय में दुर्गति चालू हो जाती है। आठों कर्म का क्षय एक साथ नहीं होता। पहले सबसे बड़ा दुश्मन मोहनी है, दर्शन मोहनी का क्षय होता है, फिर क्रमशः चारित्र मोहनी का क्षय होता है, और जैसे जैसे दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का क्षय होता है तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय जो तीसरे तीन जो घाती कर्म है उसका भी क्रमशः क्षय होने लगता है। वो तो बारहवां गुण स्थान में ये मोह कर्म का क्षय होने से फिर में गुण स्थान में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय भी खत्म हो जाता है प्रथम समय में ही, और वहाँ चारों घाती कर्मों का क्षय होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। देह क्षता निर्वाण, देह होने पर भी उसको निर्वाण कहते हैं, क्योंकि उसका फिर जन्म मरण होने वाला नहीं है। फिर आयु चार जो अघाती है उसकी स्थिति पूरी होने से फिर सिद्ध पद की प्राप्ति ऐसा क्रम पड़ता है। भोगवा पड़े मतलब क्या है कि आपके बगल में ये दीवार है आपको क्या आपत्ति है? आपके बगल में ये भाई बैठे हैं उसकी कोई आपत्ति है क्या? वैसे भगवान के बगल में देह है, गोत्र है, बाजू में पड़े हैं परमाणु, भोगना मैंने कोई आपत्ति नहीं आती इससे, कोई उपद्रव नहीं होता उससे। भोगने में क्या होता है कि हम उपद्रव को समझ लेते हैं कि देखो भगवान को भी भोगना पड़ता है, लेकिन कोई उपद्रव नहीं है इसका। जो कोई तकलीफ है वो तो उपद्रव की होती है ना, तो उपद्रव तो कुछ है नहीं। भले ही देह देह में है, भगवान की आत्मा अपने आत्मा में परमानंद में वो विराजमान है। सिद्ध पद में जो परमानंद है और तेरहवें गुण स्थान में जो परमानंद है उसमें कोई फर्क
नहीं है, नहीं है।
और तेरहवें गुण स्थान में जो केवल ज्ञान है और सिद्ध पद में जो केवल ज्ञान है उसमें कोई फर्क
नहीं है।
नहीं, जब ज्ञान में फर्क नहीं, सुख में फर्क नहीं, दूसरे कोई बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता
नहीं है।
वो ज्ञान में सारी दुनिया देखने में आती है, अघाती भी देखने में आवे और सब भी देखने में आवे, ज्ञान में वो जानने की चीज रह जाती है, उसका कोई उपद्रव तो नहीं होता। ये आयुष्य मेरा है ऐसा तो चतुर्थ गुण स्थान में खत्म हो गया, अपना आत्मा का ज्ञान भान होने से ये भाव मेरा है वो बात खत्म हो गई। इसलिए ज्ञानी सुखी हो जाता है शुरू से ही, ये भाव भी मेरा नहीं और भाव के प्रसंग रूप जो उदय है वो भी मेरा
नहीं है,
नहीं है। वहां से तो शुरुआत होती है मोक्ष मार्ग की। ऐसी जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है इसलिए वो सुख का मार्ग है ऐसा कहने में आता है। क्या कहते हैं, एगंत सुही मुनि वितरागे, विश्व में कौन सुखी है, देव सुखी है, राजा सुखी है, श्रीमंत सुखी है, ऐसा नहीं कहा, एक वितरागी मुनि सुखी है। क्योंकि उसमें आनंद का स्रोत भीतर में से आता है, पता ही नहीं चलता है कि मैंने कपड़ा पहना नहीं पहना, ठंडी लग रही है कि नहीं लग रही है, गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको तो पता ही नहीं चलता। ऐसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, भीतर में से आनंद बहुत आता है, करंट चलता है तेजी से, आनंद का करंट चलता है तो दूसरी दूसरी बातों का पता नहीं चलता है, उतनी वितरागता हो जाती है, इतना मोक्ष हो जाता है।
भगवान जय हो परम कृपालु श्री कान्ति।